बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्विक हमारे भाई राकेश भाई ने भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया था और उसका नाम है एलिवेट अवर सेल्स टूवर्ड्स हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति, सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति। वो अपनी बात उन्होंने मुझे बोला था, मैं 5-10 मिनट में रख दूंगा, आप उन्हें भी सुन के जाए तो आपको ख्याल आएगा कि तीन प्रोजेक्ट जो हुए थे उसमें से तीसरा प्रोजेक्ट आपके सामने दिया जा रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा समय हम मेडिटेशन के लिए भी रखेंगे। ओम शांति। आइए राकेश भाई।
पिछले साल जो 20वां जो एनुअल मीटिंग हुआ था उसमें थर्ड प्रोजेक्ट जो लिया गया था उस प्रोजेक्ट का नाम था सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना, और पूरे साल भर ये प्रोजेक्ट किया गया और उसमें विशेष ये बात रखी गई कि जगह जगह पर इसके वर्कशॉप्स किए जाए, और मुंबई में भी कुछ महाराष्ट्र जोनल मीटिंग थी उसमें भी ये वर्कशॉप किया गया, और उसमें जो भी अलग अलग सेवा केंद्र के भाई बहने सम्मिलित थे तो उन्होंने भी अपने जगह जाके भी उस वर्कशॉप्स को किया है। तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो ही व्यक्तित्व आते हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और उन्होंने कैसे अपने जीवन को ऐसे उच्चतम स्थिति को प्राप्त कराया, तो उन्हीं को सामने रखते हुए यहां पर हमारी जो प्रोजेक्ट गाइड थी उन्होंने भी इस पूरे क्लास को, मतलब 1.5 घंटा जो क्लास कराया था तो उसमें 8 अलग अलग टॉपिक्स भी दिए थे। तो विशेष इस प्रोजेक्ट को जब लिया गया तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति, तो उसको कैसे हम प्राप्त करें, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो पहली हमारी हमें स्मृति दिलाई जाती है कि हम देवता थे, और उस स्मृति से ही हमारे में वृत्ति परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और उसी वृत्ति से हमारी दृष्टि बदलती है और दृष्टि के साथ साथ कृति भी बदलती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को, जैसे कि स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और कृति, तो यही बात जैसे कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी रही, क्योंकि शिव बाबा ने जब उनको बताया तो उनको पहले तो साक्षात्कार ही कराए थे और उनको स्मृति दिलाई थी कि आप ही वो चतुर्भुज नारायण हो और आपको ही ये वापिस इस नई सृष्टि को वापिस स्थापन करना है। तो जैसे कि उनको जब स्मृति आई तो उनके सामने जो भी जाते थे, तो उनकी जब वृत्ति परिवर्तन हुई तो उनके सामने जो भी जाते थे उन्हें श्रीकृष्ण के साक्षात्कार होते थे, और ये बात जैसे कि ओम मंडली स्थापन हुई तो ये 350 भाई बहने जब यज्ञ स्थापन हुआ तो ये सभी साक्षात्कार के रूप में मोस्टली सभी ने बाबा को पहचाना और उस रूप से वो चल पड़े। तो यही बात जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी पहले स्मृति है, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि और कृति हमारी अपने आप चेंज होते लगी है, और उसी को हमने यहां पर रखा हुआ है। और हमारे जो एम ऑब्जेक्ट है जैसे कि सत्वप्रधान स्थिति को प्राप्त करना, और अपने प्रधान अवस्था में ही ऐसी हम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और जो मेथड हमने यूज की है तो हर आत्मा में जो 7 अविनाशी गुण है तो हर एक में उतना ही वो गुण है, 7 ही गुण है। हमारी ओरिजिनल स्टेज में अगर हम परमधाम में देखे सभी अपने आप को तो हम संपूर्ण अवस्था में थे, और जैसे ही हम सतयुग में आए तो हम जन्म पुनर्जन्म लेते रहे, और फिर हमारे में वो जो 7 गुण जो थे संपूर्ण अवस्था में, तो फिर वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं संगम युग में वापिस हम उन्हीं गुणों को यूज कर रहे हैं। तो जैसे इन्हीं गुणों को हमने लेकर के हमारी पहले स्मृति को चेंज कर रहे हैं, हम वृत्ति को किया, फिर दृष्टि और कृति को, और हमारे इसमें इंस्पिरेशन जो है रमेश भाई जी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को जैसे कि हरी झंडी दिखाई, और उषा दीदी हमारे गाइड थे जिन्होंने बहुत अच्छा क्लास भी कराया था, और उसमें कुछ अलग अलग 8 स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया था जो ब्रह्मा बाबा के भी जीवन में वो 8 स्थितियां रही, और हमारे सभी के जीवन में वो 8 स्थितियां है, या हम अलग अलग दिन में अलग अलग रूप से उसको अनुभव भी करते हैं। और प्रोजेक्ट के हमारे जो गाइड थे अलका दीदी जी, आप कल्याण सब जोन के इंचार्ज है, और मुंबई लोकल चैप्टर्स जो है उनके आप कोऑर्डिनेटर हैं, और अनुरूप भाई जी भी यहां पे थे, और कोऑर्डिनेटर के रूप में फिर प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए राकेश भाई पूना और मुंबई से रामाराव भाई थे, और इस प्रोजेक्ट से जो भी जुड़े हुए थे तो उनको बकायदा उनको ईमेल्स के द्वारा ये सारे प्रोजेक्ट के पॉइंट्स भी भेजे जाते थे, चार्ट भेजे जाते थे और उसका अभ्यास किया जाता था। तो ये लगभग 8 पॉइंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन में होती है, तो जैसे हम बाबा के बनते हैं तो वो मर्यादाओं का पालन करना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि इन सब बातों में कुछ स्टैग्नेंसी सभी ब्राह्मणों में आ जाती है। कुछ ब्राह्मण जीवन के पहले कुछ 4-5 साल बहुत उमंग और उत्साह के होते हैं, पुरुषार्थ के होते हैं, लेकिन आगे आगे फिर चलते जब हम एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी स्टैग्नेंसी शुरू हो जाती है, निगेटिविटी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इसी को वापिस इस प्रोजेक्ट को हमने इसलिए लिया था कि वापिस हम अपने आप को रिजुनेट करते रहे, तो वापिस हमारी जो मर्यादाएं है हमें वो याद दिलाती है कि हम सही राह पे चल रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि हमारी आजकल जो मर्यादा हम सभी जैसे ही ज्ञान में आते तो सुनाई जाती है कि मुरली हमें कभी मिस नहीं करनी है और मुरली को हमें समय पे भी आना है, लेकिन आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप जैसे कुछ एप्लीकेशन है या कुछ ऐसे गैजेट्स हमारे साथ है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि कई भाई बहने सेंटर पे न आते हुए घर में ही वो मुरली पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं। तो मर्यादा हमारी जो ब्राह्मण जीवन की, अगर हम उसको सुचारू रूप से अगर उसको परफेक्ट रीति से अगर पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त हो सकता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है कि ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की, है ना। शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने जो भी साकार में जो भी महावाक्य उच्चारण किए तो रोज मुरली जहां ही बाबा रहते थे वहां मुरली जरूर चलती थी। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, तो हमें भी मुरली कभी मिस नहीं करनी है। या बहुत सारी ऐसे मर्यादाएं हैं तो उसको मैनुअल रूप में भी हमने हर चीज को बनाया हुआ है। दूसरा है इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे बाबा ने भी जैसे बाबा को ज्ञान मिला कि नया सतयुग स्थापन करना है और वापिस घर जाना है, इस सृष्टि का महाविनाश होने वाला है, तो उन्होंने अपनी जो भी चल अचल जो भी संपत्ति थी वो सारी बहनों के नाम कर दी और ये यज्ञ की स्थापना हुई। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी तन मन धन की जो समर्पणता है, तो जैसे कि हमारे अंदर अगर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो हमारा तन मन धन सारा ईश्वरीय कार्य में ही लगता रहेगा। तो इच्छा मात्र अविद्या हम कैसे बने, तो जैसे कि बाबा ने साकार वाणियों में और अव्यक्त वाणियों में भी बहुत कुछ बातें बताई है, तो उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए उन्हीं को कुछ अपने अपने अनुभवों के रूप में लोगों ने उसको इस प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारी सबसे जो अच्छी अवस्था होती है वो सदा लवलीन अवस्था, क्योंकि हमें संसार का वैराग आ चुका होता है और फिर हम बाबा के बन करके बाबा की याद में लवलीन अवस्था में रहते हैं, और वही लवलीन अवस्था को बार बार हमें रिपीट करना है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में उसको स्पेसिफिकली वो अवस्था को भी हमने लिया हुआ है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब अलौलीन अवस्था होती है तो माया का अपोजिशन बढ़ने लगता है और कोई ना कोई विघ्न हमारे सामने जरूर आते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी या मम्मा के जीवन में भी बहुत सारे विघ्न यज्ञ में आए, तो उन्होंने कैसे अचल और अड़ल और अंगद के समान उन्होंने अपनी स्थिति को रखा और कैसे उन्होंने उन सारे विघ्नों पर उसको उन्होंने पार किया, तो उसी प्रकार से हम भी कैसे हमारे सामने जो भी विघ्न आते हैं तो उनको कैसे हम अंगत समान अचल और अडोल बन सकते हैं, तो वो भी एक हमारी श्रेष्ठ अवस्था है। दूसरा पांचवा है निश्चिंत स्थिति, जैसे कि बेफिक्र बादशाह हम बन जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने सभी ने देखा कि बाबा एकदम बेफिक्र बन गए थे, तो जो भी कारोबार चलती थी तो बाबा को कभी ज्यादा सोच नहीं उसके बारे में चलता था। जैसे बेगरी पार्ट भी चला तो भी बाबा बहुत निश्चिंत थे, उनकी परीक्षा हुई। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कोई ना कोई परीक्षा आती है, तो अगर हम निश्चिंत रहे और बाबा हमारे हमेशा साथ है, अगर ये निश्चिंत वो हमारा निश्चय है, तो उस निश्चय से ही हम निश्चिंत बन सकते हैं और बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो ये भी हमारी एक अवस्था हम श्रेष्ठ बनाते हैं। और फिर है अंतर्मुखी और रूहानियत और अलौकिकता को प्राप्त करना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी हम सभी ने देखा, जैसे कि सुना, कि जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे तो उनके कुछ दिनों से ही बाबा जैसे कि बहुत अंतर्मुखी रहने लगे और वही अवस्था को, वैराग अवस्था को उन्होंने और ही धारण कर लिया। और जैसे कि बाबा फरिश्ता रूप में आगे बढ़ने वाले थे तो वो अवस्था को उन्होंने पहले ही प्राप्त किया। और अंतर्मुखता के बाद फिर डबल लाइट फरिश्ता स्थिति है। तो हम तो सभी फरिश्ता बनने वाले हैं, लेकिन बाबा ने हमें जो अनुभव फरिश्ते रूप के बताए तो उसी को आज भी हम यूज कर रहे हैं और हम सब फरिश्ते बन करके योग में भी उसको अनुभव करते हैं और औरों को भी अनुभव कराते हैं। तो ये हमारी फरिश्ता स्टेज की अवस्था है। और लास्ट में है बीज रूप अवस्था, कि जो बाबा की अंतिम दिनों में ये बीज रूप अवस्था रही और पूर्ण उन्होंने अपने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो यही हमारी अंतिम स्थिति भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग आठ ये स्थितियां हैं। तो इसमें लगभग पांच स्थितियों पे बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारी जगह पे इसके जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया तो उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस की है। तो लगभग ये दो दो मास के लिए एक टॉपिक लिया गया और उन्होंने अपने चार्ट्स को भी बहुत इम्प्रोवाइज किया हुआ है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रोजेक्ट और भी आगे चलेगा और ये सर्वोच्च अवस्था तो सभी को हमको वापस प्राप्त करनी है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट वैसे देखा जाए तो ये पूरा नहीं हुआ है, ये आगे भी चलता रहेगा। और उसमें भी जहां जहां जगह जगह पे जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं तो उसमें भी कुछ विचार सागर मंथन करने के बाद जो भाई बहनों के अपने विचार है या कुछ अनुभव है तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसको भी आप रेफर जरूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे भी ऐसे कुछ भाई बहने होंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया होगा पूरे साल भर में और कुछ चार्ज भी अपने उन्होंने भरे होंगे। ओम शांति।